प्रजापते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज हम पढ़ेंगे श्री ईशोपनिषद का 14वां श्लोक। कृपया मेरे पीछे दोहराइए, संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, कि हमें पूरी तरह से भगवान को और उनके दिव्य नाम को जानना चाहिए और साथ साथ ये अशाश्वत भौतिक जगत जो है उसे भी जानना चाहिए। जब हम इन दोनों को जान लेंगे तो हम मृत्यु के परे हो जाएंगे और साथ साथ ये भौतिक सृष्टि के परे भी हो जाएंगे और फिर इसके पश्चात हम भगवान के दिव्य शाश्वत धाम में प्रवेश करने के लिए योग्य हो जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में भौतिक स्तर पे काफी प्रगति हो चुकी है, हमारा विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है, नए प्रकार की दवाइयां निकल रही हैं, नए नए प्रकार के गाड़ियां वाहन निकल रहे हैं, नए नए बड़े बड़े मशीन और यंत्र निकल रहे हैं, पर इसके बावजूद आज तक हमारे भौतिक ज्ञान ने जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चार चीजों का अभी तक, ये चार समस्याओं का हल अभी तक नहीं निकाला है। और जब कोई व्यक्ति ये सवाल करता है तो ये जवाब मिलता है कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, हमारे विज्ञान के द्वारा ऐसी अवस्था हो जाएगी, ऐसे नए नए हम दवाइयां निकालेंगे, ऐसे नए नए यंत्र निकालेंगे जिससे कि हम अमर रहेंगे। पर वास्तव में सिर्फ ये साबित करता है कि जो भौतिकवादी लोग हैं उनका अज्ञान कितना गहरा है। वो नहीं जानते कि जब तक हम ये भौतिक स्तर में हैं तो सब कुछ क्षणिक है, क्षणगंभूर है। भौतिक स्तर पे कुछ भी शाश्वत नहीं हो सकता है। भौतिक स्तर पे हर चीज को, हर प्राणी को छह प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जन्म होता है, उसके बाद विकास, फिर परिपक्वता, फिर घटाव और उसके बाद विनाश या मृत्यु। तो ये छह स्तर हैं हर प्राणी को, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे पेड़ हो, चाहे मानव हो, चाहे देवता हो, सबको ये छह परिवर्तन से गुजरना पड़ता है। और जब तक हम ये भौतिक दुनिया में हैं, कोई भी योनि में क्यों न हो, ये छह परिवर्तन से हमें पार करना होगा। इसलिए चाहे हम ब्रह्मा जी के लोक में हो, ब्रह्मलोक में, चाहे हम स्वर्गलोक में हो या पृथ्वी लोक में हो या पाताल लोक में, हमें ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन चीजों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। हम देखते हैं कि यहां इस दुनिया में भी ऐसे कीड़े होते हैं, कई छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि बिजली के पास जाते हैं। उनकी आयु सिर्फ एक दो घंटे होती है हमारे समय के हिसाब से, आपने देखा होगा। वो बिजली के पास जाते हैं या आग के पास जाते हैं, फिर जल के राख हो जाते हैं। एक घंटे दो घंटे की उम्र उनकी होती है, पर उनके लिए तो ये सारा जीवन है। पर उनकी दृष्टि से हमारा जीवन तो है बहुत लंबा है। और हम देखते हैं इस पृथ्वी में भी ऐसे पेड़ हैं जो कि 5000 साल तक जीते हैं। कलकत्ते में भी ऐसा पेड़ है जो कि कहते हैं लोग 5000 साल पुराना है, अश्वत्थ पेड़ है। और ये बताया जाता है शास्त्रों में कि स्वर्ग लोक में देवताओं की आयु होती है बहुत बहुत लंबी। हमारा जो एक साल, ये पृथ्वी लोक का एक साल जो है वो स्वर्ग लोक का एक दिन माना जाता है। एक दिन यानी 24 घंटे। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनका एक साल कितना लंबा होगा। और जो देवतागण हैं वो उनके समय के अनुसार हजारों हजारों सालों तक जीते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी आयु कितनी लंबी है। और उनसे भी ज्यादा आयु है ब्रह्मा जी की जो कि सृष्टि करता है। उनकी आयु तो इतनी लंबी है कि इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। ये कलयुग जो है, ये कलयुग 4,32,000 साल है। इसकी अवधि 4,32,000 साल है। और इसके पहले की जो युग का जो युग है द्वापर युग, ये कलयुग से दो गुना ज्यादा है इसकी अवधि। और त्रेता युग की अवधि है इससे तीन गुना ज्यादा, कलयुग से तीन गुना ज्यादा। और सत्ययुग की अवधि है कलयुग से चार गुना ज्यादा। ये चार युगों को मिलाकर एक दिव्य युग कहते हैं या महायुग। तो एक महायुग की अवधि हो गई कितने, एक कलयुग की अवधि को आप 10 गुना करेंगे उतने हो जाएंगे, यानी 432 करोड़ साल। अब ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हो गए, 12 घंटे। और अगर 24 घंटे करने हैं उसका दुगना करना होगा, यानी 864 करोड़ साल हमारे साथ, 864 करोड़ साल ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन होता है। और उनके समय के अनुसार ब्रह्मा जी जीते हैं 100 साल ना? तो आप अंदाज लगाइए, शायद आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी या कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी ये समझने के लिए कि ब्रह्मा जी कितने समय तक जीते हैं। पर फिर भी ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है। इसलिए चाहे वो छोटा सा चींटी क्यों ना हो, या चाहे वो ब्रह्मा जी क्यों ना हो, सबकी मृत्यु ये भौतिक दुनिया में निश्चित है। इसलिए इस जगह को मृत्यु लोक बताया गया है, ये भौतिक दुनिया को, क्योंकि सबकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोक पुनः आवर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वो कहते हैं कि सबसे ऊपर ब्रह्मलोक से लेकर सबसे नीचे पाताल लोक तक सब के सब जन्म मृत्यु रूपी क्लेश से पूर्ण है। सिर्फ जो मेरे धाम में चले आता है वो ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाता है। तो जहां तक जब तक हम ये भौतिक दुनिया में हैं, ये मृत्यु लोक में है, तब तक ये जन्म मृत्यु इनका सामना हमें करना ही होगा। तो जो व्यक्ति समझदार है वो इस भौतिक दुनिया में अपना घर नहीं बनाना चाहते, हमेशा के लिए ये भौतिक दुनिया में रहना नहीं चाहते, वो ये सोचते हैं कि इससे परे भी अगर कोई अवस्था है तो उससे हम उसमें हम जाएं, जहां पे मृत्यु ना हो, जहां पे जरा व्याधि बुढ़ापा ना हो, जहां जन्म ना हो, जहां कोई भौतिक तकलीफें ना हो, ये भौतिक शरीर ना हो, ऐसे जगह ढूंढना चाहिए हमें, ये बुद्धि है। पर वास्तव में हम देखते हैं कि भौतिक दुनिया में ऐसे मार्गदर्शन हमें कोई नहीं कराता। सब लोग सिर्फ हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये भौतिक दुनिया में रहकर हमारी अवस्था को किस तरह से सुधारें। पर ये भौतिक दुनिया में, ये दुख के दुनिया में आप क्या सुधार कर सकते हैं? यहां सुधार तो असंभव है। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये दुनिया में सुख पाने का प्रयास न करो, जो अपने कर्म किए हैं वो कर्म के अनुसार आपको सुख मिलने ही वाला है। जिस प्रकार से बिना प्रयास किए हुए दुख चले आता है, उसी प्रकार बिना प्रयास किए हुए सुख भी चले आएगा। प्रयास न करो और अंत में आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि ये दुखालय और शाश्वतम है, ये भगवान का गारंटी है, सर्टिफिकेट लिख के दिया है भगवान ने भगवद गीता में कि आपको यहां दुख ही दुख भुगतना पड़ेगा। पर फिर भी ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो कि हमें ये प्रेरणा देते हैं कि नहीं नहीं, आप फिक्र न करो, ये शास्त्रों की ओर ध्यान न दो, आप ये भौतिक दुनिया में, इसी दुनिया में हम आपको ऐसा जीवन बना के देंगे कि आप अमर रह सकते हैं, आप सुखी रह सकते हैं। अभी हमने देखो, अभी 24 घंटे का टेलीविजन निकाला है आपके मनोरंजन के लिए, अभी हमने ये बड़े बड़े कंप्यूटर निकाले हैं और बड़े बड़े मशीन, नए नए फैक्ट्री निकाले हैं जिससे कि इतना धुआं आ जाए कि सब लोग कैंसर को कैंसर हो जाए, अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाए, वो ये नहीं बोलते। पर बोलते हैं कि बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, बड़े बड़े यंत्र हैं, ये सब हम इतना हमारा विकास हो गया है। तो ये अज्ञान है, अविद्या है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ जाता है कि भौतिक दुनिया में सब कुछ क्षणभंगुर है, इसलिए मुझे यहां रहना ठीक नहीं है। वो पूछता है क्या कोई ऐसी अवस्था है जहां पर इन सब चीजों का सामना मुझे नहीं करना पड़ेगा। ये बुद्धि है, ये सच्ची जिज्ञासा है, अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा। शास्त्रों में बताया है कि मानव जीवन में आकर हमें यही प्रश्न करना है भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, भगवान के नाम के बारे में, ये जिज्ञासा हमें करनी चाहिए। और ऐसी जिज्ञासा करने से हमारा जीवन सफल हो सकता है। अगर हम हमारा धाम, हमारा रहने का स्थान भौतिक दुनिया में बनाना चाहते हैं तो फिर इससे क्या होगा? अगर हमारी उम्र ब्रह्मा जी की तरह भी है, पर ब्रह्मा जी के समय जब अंत हो जाता है, उनका जीवन जब अंत हो जाता है तो प्रलय हो जाता है, महाप्रलय। ये श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के हर एक दिन के पश्चात एक प्रलय होता है, जब सबसे भौतिक दुनिया में जो ऊपर के लोक हैं उनको छोड़ के सारे जो दूसरे लोक हैं उनको प्रलय की वजह से वो पानी का प्रवाह इतना आ जाता है कि सब डूब जाते हैं, सारे प्राणी नाश हो जाते हैं और फिर सारे जीवात्मा जो है वो अव्यक्त रूप में वो रहते हैं। ये एक प्रलय है। और ब्रह्मा जी के हर एक दिन के बाद ऐसा एक प्रलय होता है। और फिर ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में यानी ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद उस समय एक महाप्रलय होता है और ये महाप्रलय में सारा भौतिक ब्रह्मांड जो है वो खत्म हो जाता है और दोबारा पुनः सारे जीवात्मा जो हैं वो फिर से अव्यक्त रूप में आ जाते हैं। और जब अगला सृष्टि का निर्माण होता है फिर से यही जीवात्मा जो कि अव्यक्त थे फिर भी व्यक्त रूप में उनको प्रकट कराते हैं भगवान और फिर से अलग अलग योनि में उनको वो प्रवेश कराते हैं। तो इस तरह से भूतवा भूतवा प्रवीयते ये चलते आ रहा है चलते आ रहा है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है मुझे ये व्यक्त अव्यक्त 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 ये चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे भगवान के धाम में जाना है। कई लोग ऐसे कर्मकांडी यज्ञ करते हैं या मंत्र बोलते हैं या अनेक तरह के जाप पूजा करते हैं ये इच्छा से ये अभिलाषा से कि हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। जो इनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति अवश्य होती है और जो लोग ज्ञानी हैं वो चाहते हैं कि वो लोग इनसे भी ऊपर लोगों में प्रवेश करें और जो योगी हैं वो चाहते हैं कि हम सीधे ब्रह्मलोक तक पहुंचे। पर चाहे वो स्वर्गलोक हो महालोक जनलोक तपलोक पाताललोक ब्रह्मलोक सब लोग जन्म मृत्यु रूपी क्लेश से दूर हैं। इसीलिए इस उपनिषद में यहां बताया गया है कि सिर्फ भौतिक दुनिया को जानने से आपका उद्धार नहीं हो सकता। एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, थोड़े ही दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि किसी ने उनका इंटरव्यू लिया था और वो कह रहे थे कि मेरे रिसर्च से मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान का मन क्या है, भगवान के मन में क्या विचार है। और ये सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा, करीब 60-70 साल पहले थे। और ये आइंस्टाइन दुनिया के ये 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक माने जाते हैं। तो ये जो दिव्य व्यक्ति हैं ये इनके बाद में सब ये बहुत बड़ा नंबर है इनका विज्ञान की दुनिया में। ये कहते हैं कि मेरे रिसर्च से मैं भगवान का मन क्या है ये जानना चाहता हूं। तो देखिए जब तक हम ये भौतिक स्तर पर हैं हम आत्मा को भी नहीं पहचान सकते तो भगवान को क्या जानेंगे। भगवान को जानना होगा तो हमें ये भौतिक अवस्था से परे होना होगा, नहीं तो हम नहीं जान सकते। हमारी ये कण जैसी बुद्धि से लेकर हम भगवान को कैसे पहचान सकते हैं, ये तो असंभव है। इसीलिए पहली चीज है कि हमें ये भगवान से परे जाना है, ये भौतिक अवस्था से परे जाना है। क्योंकि जो भौतिक अवस्था है ये एक बड़ा आवरण हमारे सामने खड़ी कर देती है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहरिता चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जिस व्यक्ति को भोग करने की इच्छा है ऐसे व्यक्ति के मन में मेरे प्रति भक्ति जागृत नहीं होती, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये भोग की भावना है, ये ऐश्वर्य प्राप्त करने की जो भावना है ये एक बड़ा आवरण खड़े कर देती है हमारे बीच में और भगवान के बीच में, और इसको हटाना बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसा व्यक्ति भी है जो कि स्थूल रूप से भोग नहीं करना चाहता तो उस वैज्ञानिक की तरह सूक्ष्म रूप से वो भोग करना चाहता है अपने बुद्धि के बल से। फिर भी भगवान बताते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। वो कहते हैं कि ऐसे लोग मूढ़ हैं, मूढ़ लोग यानी जिनकी अल्प बुद्धि है, पशु के समान इनकी बुद्धि है और ऐसे व्यक्ति कभी मुझे नहीं जान सकते। मूढ़ो यम न अभिजानाति, ये ऐसे मूढ़ व्यक्ति मुझे कभी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मेरी माया शक्ति से मैं उनकी आंखों के सामने एक ऐसा आवरण खड़ा कर देता हूं कि बुद्धिमान सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी बिल्कुल बेकार का हो जाता है, उसकी बुद्धि कोई काम नहीं करती। और ऐसे ये लोग बात करते हैं कि मैं भगवान के मन में क्या है ये जानना चाहता हूं, अपने गणित से अपने कंप्यूटर से वो भगवान को जानना चाहते हैं, ऐसी हमारी बुद्धि हो जाती है। तो भौतिक स्तर पे चाहे वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, भगवान को जानना असंभव है। और थोड़े लोग हैं जो कि आध्यात्मिक स्तर पे अवश्य आने का प्रयास करते हैं, वो समझते हैं कि ये भौतिक स्तर पे रहने से भगवान की प्राप्ति हम नहीं कर सकते, पर वो सोचते हैं कि भगवान जो है वो निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। और ऐसे भगवान, ऐसे निर्विशेषवादी लोग वो भी चेष्टा करते हैं, पर भगवान बताते हैं ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा। भगवान कहते हैं कि मैं ये ब्रह्म ज्योति का आधार हूं, ये ब्राह्मण का आधार हूं, इसीलिए ये ब्राह्मण, ये ब्रह्म ज्योति से भी हमें परे जाना होगा। इसी विषय को अगले श्लोक पर यहां बहुत सुंदर तरीके से बताया है। हम पढ़ेंगे 15वां श्लोक, कृपया आपके कागज में देखिएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापहृतमुखम् तत्त्वं पूषन्त पावनो सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापहृतमुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापहृतमुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि हे प्रभु, आप जो कि सब प्राणियों के परम पोषक हैं, कृपया आपके मुख से, आपके मुखारविंद से जो ये बहुत ही तीव्र प्रकाश है, जो उजाला है, उसको कृपया हटा दीजिए ताकि मैं आपका मुखारविंद देख सकूं। इस तरह से अपने आप को इस भक्त के नेत्रों के सामने दर्शाइए। हम भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो आपके मुखारविंद के सामने जो इतना तेज प्रकाश है, बहुत ही तीव्र प्रकाश है, ये इसकी वजह से मैं आपके मुखारविंद को नहीं देख सकता, कृपया इस प्रकाश को। तो देखिए यहां साफ साफ इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि भगवान सिर्फ निराकार नहीं है, सिर्फ निराकार व्यक्ति का मुख नहीं होता। जैसे इन प्रवचनों के दौरान श्रीमद् भागवत में बताया है कि परम सत्य के तीन स्वरूप हैं, वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वमात्मेति भगवान इति शब्दते। सबसे पहले ब्रह्म, ब्रह्मन जो कि परम सत्य का निराकार स्वरूप है, और ये निराकार स्वरूप को ज्ञानी लोग पहचानते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञानी, जो ज्ञान योग के मार्ग पर चलते हैं, उनको होता है। और इसके ऊपर है परमात्मा, परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार योगियों को होता है, जो ध्यान योग का मार्ग अपनाते हैं उनको परमात्मा साक्षात्कार होता है। परमात्मा ये परम सत्य का वो स्वरूप है जो कि हमारे हृदय में विराजमान है। हम सब प्राणियों के हृदय में भगवान मौजूद हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। भगवान कहते हैं कि मैं मेरे विस्तारित रूप में हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान हूं, और हर एक व्यक्ति के भ्रमण को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो यह परमात्मा, तो परमात्मा स्वरूप के ऊपर ध्यान योगी ध्यान लगाकर समाधि में बैठते हैं और उनको यह परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार होता है। और इससे भी ऊपर है भगवान का स्वरूप, साक्षात भगवान कृष्ण। जो कि एक परमात्मा के और ब्रह्म के ब्रह्मन के स्रोत है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठानम, भगवान जड़ है, श्री कृष्ण जड़ के समान है और ब्रह्मन और परमात्मा शाखाओं के समान है। तो हालांकि तीनों परम सत्य ही है, फिर जो निर्विशेषवादी लोग कहते हैं कि भगवान या परमाकार है वो गलत नहीं है, सिर्फ ये वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। भगवान ही परम सत्य निराकार अवश्य है, पर इससे ज्यादा और कुछ भी है, वो परमात्मा भी है और अंत में वो भगवान भी है, श्री कृष्ण। और भगवान का सब परम सत्य का सबसे ऊंची परम सत्य की सबसे ऊंची पहचान है भगवान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण एक व्यक्ति है, पर कैसे व्यक्ति है? आप जैसे और हमारे जैसे व्यक्ति नहीं है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उनका शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है, भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं है उनका। उनका शरीर सच्चित आनंद विग्रह, पूर्ण आध्यात्मिक शरीर है। इसके बारे में चर्चा हमने तो कई बार की है इन प्रवचन के दौरान, तो इस पर हम ज्यादा भी ध्यान नहीं देंगे। खैर, कहने का मतलब यह है कि परम सत्य भगवान एक व्यक्ति है और जो ब्रह्मन का जो उजाला है, वो उजाला की वजह से जो ज्ञान योग के मार्ग पर है, जो ज्ञानी है, वो भगवान को नहीं देख सकते। इसलिए पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि निर्विशेषवादी भी अज्ञान के मार्ग में है, हालांकि वो परम सत्य की खोज में है, पर फिर भी क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण की जानकारी नहीं है, इसलिए वो भी अज्ञान की अवस्था में ही कहलाते हैं। देखिए, एक आदमी अंधा दो अवस्था में बन सकता है। एक है जब पूर्ण अंधकार है, मान लीजिए कि बाहर अंधकार है और सारे लाइट्स यहां पे आप बंद कर देंगे, सारे लाइट बंद कर देंगे तो क्या होगा? हम कुछ देख नहीं पाएंगे, तो अंधे जैसे हो जाएंगे, हमारी दृष्टि चली जाएगी। और दूसरी अवस्था, मान लीजिए कि आप बैठे हैं और अचानक आपकी आंखों में एक बहुत ही तेजस्वी प्रकाश वाला टॉर्च जो है सीधा आंखों में आके चालू कर दो, तो उस समय जब उजाला आपकी आंखों में है, आपको कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब बिल्कुल प्रकाश नहीं होता है और जब बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, दोनों अवस्थाओं में हम अंधे बन जाते हैं। और अंधकार का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? अज्ञान। तो दोनों अवस्थाओं में हम देख नहीं सकते कि परम सत्य क्या है, भगवान क्या है। जो भूवादी लोग हैं वो तो पूरे के पूरे अंधकार में ही डूबे हुए हैं, वहां तो कोई उजाला है ही नहीं। पर जो निर्विशेषवादी है, उजाला तो है पर उजाला इतना तेज है, इतना तीव्र है कि उसकी वजह से भी वो देख नहीं पाते हैं। इसीलिए यहां भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया जो आपकी जो तेज जो ये ब्रह्म ज्योति है, कृपया इसको हटा दीजिए ताकि मैं आपके सुंदर मुखारविंद को देख सकूं। तो जो भक्त है वही परम भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं, और ऐसे भगवान को जानकर हम उनके धाम में जा सकते हैं। इसलिए पिछले श्लोक में हमने देखा था, यह बताया गया था कि हमें भौतिक दुनिया को भी, अशाश्वत भौतिक दुनिया के साथ साथ भगवान को भी जानना चाहिए, नहीं तो हमारा ज्ञान व्यर्थ रहेगा। तो भगवान को जाने तो जाने कैसे? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चाश्मि तत्वतः, सिर्फ भक्ति से हम जान सकते हैं। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम, भगवान कहते हैं ऐसे भक्ति से तुम मुझे जान सकोगे, और जब पूरी तरह से जान पाओगे और जान जाओगे, उस समय मेरे धाम में तुम प्रवेश करने के लिए योग्य बन जाओगे। तो पिछले श्लोक में बताया था कि जो व्यक्ति ये भौतिक दुनिया को और भगवान को साथ साथ जानता है, ऐसा ही व्यक्ति मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है। तो भौतिक दुनिया को जानना ये तो उतना मुश्किल नहीं है, शास्त्रों में भी काफी ज्ञान दिया गया है, पर भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। इसके लिए सिर्फ भक्ति चाहिए, और जब भक्ति से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है तब हम भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो भक्ति में भक्त के सामने भगवान साक्षात प्रकट होते हैं और आमने सामने से अपने भक्त के साथ वो प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। हम कृष्ण लीला में देखते हैं जब भगवान अवतार लेके आए थे यहां पे 5000 साल पहले, तो यहां पे धरती में वो 125 साल वो रहे, कई लीलाएं की उन्होंने, और ऐसे लीलाएं करते दौरान उनके साथ में जो लीला करने वाले थे उनके बड़े बड़े भक्त थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो उदाहरण से वो जब छोटे बालक थे गोकुल में, ये सब रोल भगवान तो बालक क्या, भगवान तो भगवान ही रहते हैं, पर फिर भी वो ऐसे रूप धारण करते हैं क्योंकि ऐसे रूप में उनके भक्त साथ वो लीला करते हैं और ऐसे लीला करने से उनको बहुत आनंद आता है और उनको भक्तों को भी आनंद आता है। तो जब वो ग्वाल बाल के रूप में आए थे तो चराने जाते थे, गोकुल में रहते थे और इतने सारे असुरों का वध उन्होंने किया, प्रलंबित बाकासुर, राघासुर, हिनुकासुर, इतने सारे असुर आए थे, त्रिनावर्त, पूतना, तो इतने लीलाएं की उन्होंने। के साथ में जो ग्वाल बाल थे वो कौन थे व्यक्ति, ये ग्वाल बाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, इन्होंने हजारों हजारों सालों उनकी ऐसी सुकृति या पुण्य इकट्ठी हुई थी इसीलिए वो भगवान के आमने सामने आकर उनकी सेवा कर पाए, उनकी लीलाओं में हाजिर हो पाए। नहीं तो ऐसा ही कोई साधारण व्यक्ति जाकर भगवान के साथ लीला करे, ये असंभव है। ये सब भगवान के नित्य पार्षद हैं। जब भी भगवान अवतार लेके आते हैं, अवतरित होते हैं इस भौतिक दुनिया में, तो ऐसे लोग थोड़े हैं उनके भगवान के धाम से आकर नीचे उनके साथ लीला करते हैं, और थोड़े जीव जो कि पुण्य करके करके धीरे 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 जो ऊपर आए हैं उनको भगवान का संग करने का मौका मिलता है और फिर वो भगवान के आमने सामने आकर प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। और ये कैसा प्रेम है, ये ऐसा प्रेम है जिसमें ग्वाल बाल मित्र कृष्ण के साथ कुश्ती करते थे। अभी कोई दूसरे धर्म में कोई कहे कि देखो भगवान के साथ कुश्ती करे तो वो कहेगा भाई कैसे बात कर रहे हो, ये तो बिल्कुल निंदा है, भगवान की निंदा कर रहे हो आप, भगवान के साथ कोई कुश्ती कर सकता है। और भी ऊंची आप देखिए, यशोदा माता थी जो कि भगवान श्री कृष्ण की माता का रोल अदा कर रही थी, वो तो छड़ी लेकर बाल कृष्ण को तो पीटती मारती थी, उनको डांटती थी। आप किसी को बताएं कि भगवान को कोई ये माता है उनकी छड़ी से मारने के लिए है तो सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल पागल ही हो गए, पहले तो सिर्फ कुश्ती की बात कर रहे थे अभी तो छड़ी लेकर मारने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पागल ही हो गए। और उन्होंने भगवान को भी बांध के रखा, बांध जो वो क्या कहते हैं उसको, उखल, उखल से बांध के रखा भगवान श्री कृष्ण को। वास्तव में भगवान तो परमेश्वर है और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, उनको कौन बांध सकता है, सिर्फ एक चीज उनको बांध सकता है और वो क्या है, प्यार, भगवान का प्रेम, उनके भक्त का जो प्रेम है वही उनको बांधता है। और जो भक्त भगवान से ऐसे शुद्ध प्रेम करता है भगवान अपने आप को ऐसे भक्त के हवाले कर देते हैं। और हम देखते हैं कि यशोदा मैया ने पहले बहुत कोशिश की, जो घर में सार जो उन्होंने रस्सी ली और रस्सी से भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, पर देखा कि दो उंगली कम पड़ गई है रस्सी, तो फिर और ज्यादा रस्सी मंगाई उन्होंने और दोनों रस्सियों को बांधकर फिर से श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, और फिर भी क्या देखते हैं कि दो उंगली कम, तो सात के बाद एक के बाद बांधकर श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया फिर भी दो उंगली कम। बड़े हैरान होकर सारे गांव में जो भी रस्सी थी सब मंगाई, सब रस्सी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बांधकर रस्सी तो बड़ी लंबी हो गई, सारे रस्सी लेकर फिर बांधने गए फिर दो उंगली कम, तो बड़े हैरान हो गई, पसीने पसीने छूट गए। फिर भगवान ने दया, ये भी खेल है उनका, प्रेम में भी थोड़ा जो है चिढ़ाना भी होता है, कभी छोटा बच्चा मां को चिढ़ाता है, तो इस तरह से चिढ़ाने के बाद जब श्री कृष्ण देखा कि अब बहुत हो गया, अब मां के पसीने पसीने छूट गए हैं, तो अभी फिर वो अपने मां के प्रेम से बंध गए और फिर वो
बन गए।
भगवान श्री कृष्ण जो हैं ये कोई बनावटी भगवान नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि वास्तव में ये भगवान नहीं है, इनके अंदर जो निराकार स्वरूप है वो भगवान है, वही है। ये श्री कृष्ण है, ये वही परम सत्य, परम भगवान, परम ब्रह्म, परमेश्वर है। इसलिए श्री कृष्ण भगवद्गीता में इसी बात को बताते हैं कि मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणैवा। एक महान भक्त ने तो प्रार्थना की है, मैं वेदों की प्रार्थना नहीं करता, ना ही तो मैं अलग अलग अवतारों की पूजा करता हूं, ना ही तो मैं मुझे इतनी सारी तपस्या करने की इच्छा है, मैं तो सिर्फ उस नंद महाराज की वंदना करता हूं जिनके आंगन में परम सत्य परम भगवान एक छोटे बालक के रूप में अपने घुटनों पे यहां मिट्टी खा रहे हैं। यह उनकी प्रार्थना, जो कि ब्रह्म परमात्मा ये अवस्था के ऊपर आकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार जिन्होंने किया है। और एक बड़े महान संत हैं जिन्होंने प्रार्थना की है कि पहले मैं एक निर्विशेषवादी था और भगवान के निराकार स्वरूप को के ध्यान में मैं बैठा रहता था, पर जब से मेरी मुलाकात एक ऐसे छोटे नटखट बालक से हुई जिसके चेहरे का वर्ण जो है वो एक बरसात के मौसम का जो बादल है उसके समान है, तब से जो है मेरा मन ये निर्विशेषवादी निराकार स्वरूप से बिल्कुल हटकर सिर्फ ये छोटे बालक के चरण कमलों में लग गया है। अब मैं कुछ भी प्रयास करता हूं तो मैं ये बालक को मेरे मन से हटा ही नहीं सकता। ये है भक्त की स्थिति इतनी तपस्या करने के बाद। और जो गोपियां थी कई गोपियां तो भगवान के धाम से उनके साथ आई थी, और कई ऐसे गोपियां भी थी जो कि पुण्य करते करते ग्वाल बाल जैसे, वो भी उनको भी भगवान का संग मिला। जब प्रभु रामचंद्र आए थे या जब प्रभु रामचंद्र ने अवतार लिया था तो वनवास में गए थे, और जाते जाते दंडकारण्य के वन में से वो गुजर रहे थे। उस समय वहां कई ऋषि मुनि थे, तो इन ऋषि मुनि चाहते हैं, पर भगवान ने कहा कि देखो अभी इस अवतार में मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मैं एक ही पत्नी स्वीकार करता हूं और वह है सीता जी, पर जब मैं अगली बार आऊंगा तब आप मेरा संग पाओगे। तो इसीलिए यही ऋषि मुनि जो हैं, जब श्री कृष्ण आए साक्षात तो उस समय उनको गोपियों का स्थान मिल गया, वही ऋषि मुनियों को, वो ऋषि मुनि जो कि बहुत बड़ी तपस्या जिन्होंने की थी, जन्मों से जिन्होंने बड़े बड़े दान यज्ञ वगैरह सब किए हुए थे, जिन्होंने भगवान की भक्ति की हुई थी, उनको ये स्थान मिल गया। तो देखिए भगवान का मुखारविंद का दर्शन करना यह कोई साधारण बात नहीं है, पर जो व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त है वो हमेशा सदैव अपने हृदय में भगवान का दर्शन करता है भक्ति के शक्ति से। इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो कहते हैं कि प्रेम के अंजन जब हम हमारी आंखों पर लगाते हैं तो ऐसे अंजन से क्या होता है, जो बड़े बड़े संत हैं, संत सदैव हमेशा हृदयेषु किसको देखते हैं, श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, जो अचिंत्य गुण वाले जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं उनका वो हमेशा दर्शन करते रहते हैं 24 घंटे अपने हृदय में, और ऐसे आदि पुरुष गोविंद की मैं वंदना करता हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। तो इसलिए यहां भक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि देखिए ये जो ब्रह्म ज्योति, ये निराकार आपका स्वरूप है, ये ठीक है परम सत्य है कोई बात नहीं, पर लेकिन ये आपके मुखारविंद से हटा दीजिए कृपया, और ये कृपा कीजिए कि आपके मुखारविंद का दर्शन मुझे दे दीजिए। और अगले श्लोक में भी भगवान ये जो भक्त हैं यही बात को फिर से दोहराते हैं। कृपया 16वां श्लोक देखिए, पूषण एकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामि यो सब असौ पुरुषः सोहम अस्मि। इसमें भक्त प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे आदि दार्शनिक, हे सारे ब्रह्मांड के पालन पोषण करता, हे भक्तों की गति, और आप भी शुभचिंतक हैं, कृपया कृपा करके आपके मुखारविंद से ये जो तेज है उसको हटा दीजिए, ताकि आपका जो सुंदर रूप है मैं उसको देख सकूं। तो दोबारा यही प्रार्थना करते हैं 16वें श्लोक में भक्त। तो दोनों श्लोक में कई महत्वपूर्ण शब्द हैं। 15वें श्लोक में शब्द है मुखम। मुखम निराकार भगवान का कोई मुख नहीं हो सकता। और अपिहितम, अपिहितम यानी जो ढक गया है, इन मुख है पर हमारे भक्ति न हो, भक्तिहीन अवस्था की वजह से वो ढक गया है। और जब भक्ति हमारे हृदय में आ जाती है तो फिर वो निकल जाता है। इसलिए वो कहते हैं अपावृणु, अपावृणु की कृपया इस आवरण को हटाइए। और 16वें श्लोक में भी यही बताते हैं, रूपम कल्याणतमम, रूप है उनका, बिना रूप के नहीं है। और कैसा रूप है? कल्याणतमम, जो कि बहुत ही मंगलकाय मंगलमय रूप है उनका, साधारण रूप नहीं है, कल्याणतमम रूपम। और तत्ते पश्यामि, इसे मुझे देखना, ये आपके जो रूप है, जो कल्याणतमम रूपम है, इसको मुझे पश्यामि, पश्यामि यानी मुझे इसका दर्शन मुझे करना है। इसलिए रश्मिन समूह तेजो, कृपया इसको हटाइए आप, ये जो तेज है ना, इसको कृपया आपके मुखारविंद से हटाइए। तो ये जानना कि भगवान कौन है और भगवान की भक्ति करना, ये सबसे बड़ी चीज है। इससे बढ़कर और कोई भी परम सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। और इसीलिए चाहे हम कोई भी मार्ग पर जा रहे हो, अगर स्वयं हम श्री कृष्ण भगवान की वंदना करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनके नाम का जाप कीर्तन करेंगे, तो फिर हमारा जीवन सफल हो सकता है। और साक्षात एक न एक दिन हम भगवान को आमने सामने देख पाएंगे। पर फिर भी भक्ति भाव में कभी कभी भक्त जो है वो भगवान का दर्शन करने के लिए इतना आतुर नहीं होता जितना कि वो भगवान की सेवा करने के लिए आतुर होता है। भक्त को सेवा से मतलब है। इसलिए इससे आगे ये भी कहता है भक्त कि आप चाहे मेरे सामने आए या न आए, आप मुझे चाहे मुझे ठुकरा दें या स्वीकार करें, मैं हर अवस्था में मैं आपका दास हूं और आपकी सेवा करता रहूंगा। यही चैतन्य महाप्रभु, जो कि साक्षात यही भगवान कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले अवतरित हुए थे हमें यह सिखाने के लिए कि भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। जिस तरह से एक माता या पिता वो ए बी सी डी या अ आ ई स्वयं लिखकर अपने बालक को सिखाते हैं कि किस तरह से अ आ ई लिखना चाहिए, उसी तरह से परम ब्रह्म, परमेश्वर, परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहां आकर हमें सिखा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है। तो वो बताते हैं, आश्लिष्य वा पाद रतम पिनुष्ट माम अदर्शनन मर्म हतान करो तु वा यथा तथा विदधातु मतलम पतो मत प्राण पुना तुस्तु सएव नापरः। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमेशा मेरे प्रभु रहेंगे, चाहे आप मुझे ठुकराएं, चाहे आप मुझे स्वीकार करें, आप जो भी कीजिए, हमेशा आप मेरे ही प्रभु हैं और मैं आपकी सेवा हमेशा के लिए करूंगा। यह प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, तो बहुत ही जल्द भगवान हमें उनके करीब ले आएंगे और आत्म साक्षात्कार की परिपूर्णता की प्राप्ति हम कर पाएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या टीका किसी को? बिल्कुल।
और वो क्या कृष्ण की तरह है?
वो विष्णु की तरह है, करीब करीब ऐसे हैं दिखने में। चतुर्व्यूह रूप है परमात्मा का, और उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म ये होता है, और वो हर प्राणी के हृदय में। और योगी जो योगी होते हैं वो उनका दर्शन करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, ध्यान में स्थित होकर, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान में स्थित होकर योगी क्या देखते हैं अपने मन में, सदा पश्यन्ति सूर्य, अपने हृदय में विराजमान जो परमात्मा है उनका दर्शन करते हैं। अगर इनका पिक्चर यहां है तो मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। और कोई 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 प्रश्न किसी को? हाँ जी, ये पिक्चर को दिखा दूं। जो योगी ध्यान में बैठे हैं उनके हृदय में आपको परमात्मा का स्वरूप देख सकते हैं। आप सब जगह दिखाइए सबको, जितने सब पास। इससे अच्छा पिक्चर हमारे पास नहीं है, अगर होता तो ले आते। तो आपका सवाल है कि जो परम सत्य के तीन स्वरूप होते हैं, तीन स्तर होते हैं, क्या हमें क्रम से जाना चाहिए? यही आपका सवाल है ना। क्या हमें पहले ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिए, उसके बाद परमात्मा का, उसके बाद ही क्या हम भगवान तक पहुंच सकते हैं? ये जरूरी नहीं है। नहीं, ऐसा है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो डायरेक्ट भगवान का साक्षात्कार कर देता है। जैसे आपको अगर कोई बिल्डिंग में ऊपर जाना है, आठवीं मंजिल तक जाना है, आप सीढ़ी से जा सकते हैं या लिफ्ट लेकर जा सकते हैं। सीढ़ी से जाएंगे थोड़ा समय लगेगा, कष्ट होगा। आप लिफ्ट में जाएंगे समय तो लगेगा बट आसान होगा और कम समय। तो ये भक्तियों का मार्ग है, ये लिफ्ट के समान है, आप बहुत जल्दी ऊपर ले जाएगा। और डायरेक्टली आप भगवान जो ध्यान योग का मार्ग अपनाते हैं उनको परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और परमात्मा के साक्षात्कार में खुद ब खुद ब्रह्म का साक्षात्कार भी आ जाता है खुद ब खुद। और जो भक्तियों का मार्ग अपनाते हैं उनको भगवान का साक्षात्कार होता है, और ऐसे साक्षात्कार में ब्रह्म और परमात्मा का साक्षात्कार ऑटोमेटिक खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार सबसे ऊंचा साक्षात्कार है। भगवान, हाँ जी, हाँ जी, ज्ञान योग में आप सिर्फ ब्रह्म की साक्षात्कार, ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। भगवान का जो परम सत्य का निराकार स्वरूप है सिर्फ आप वहां तक पहुंच सकते हैं, आप उससे ऊपर नहीं पहुंच सकते ज्ञान के मार्ग से। और ध्यान योग के मार्ग से इसके एक मंजिल ऊपर और आप जा सकते हैं, आप सिर्फ परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं पहुंच सकते। और भक्ति योग के मार्ग में जाएंगे तो आप पूर्ण साक्षात्कार भगवान का साक्षात्कार आप कर पाएंगे।
जो ब्रह्म का हुआ या परमात्मा का हुआ या अपना का हुआ
पर भगवान के धाम में अंदर भी अलग अलग गति की प्राप्ति होगी अलग अलग जगह। जैसे गाड़ी है, आप दिल्ली जा रहे हैं और सारी गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली जाती है, बहुत सारे लोग हैं दिल्ली जाने वाले, पर कोई दिल्ली में जाकर ओबेरॉय होटल में ठहरता है, कोई जाकर सब्जी मंडी में ठहरता है, गति अलग अलग है। उसी प्रकार से भगवान के धाम में जरूर पहुंचेंगे लेकिन गति अलग होगी। कैसे? जो भगवान के धाम में अनेक लोक है, आध्यात्मिक लोक है, जिस प्रकार ये भौतिक दुनिया में भी लोक है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी लोक है, जहां भगवान अपने विस्तारित रूप में मौजूद है और अपने भक्तों के साथ में लीला कर रहे हैं। और ये सारे लोक है, अनंत लोक है, और ये सब ब्रह्म ज्योति में वो मौजूद है। तो जो साक्षात्कार करते हैं ब्रह्म का या परमात्मा का, वो ज्यादा से ज्यादा वो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, भगवान के धाम में, लेकिन ब्रह्म ज्योति में। जिस प्रकार हमारे भौतिक ब्रह्मांड में सूरज है और फिर ग्रह है और फिर सूरज का उजाला है सब जगह, तो सूरज के किरण जो है वो तो आकाश में है, वो तो कोई लोक में या गृह में नहीं है। उसी तरह से जो सूरज की रोशनी के समान वहां पे ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप। तो योगी और जो ज्ञानी है वो ये ब्रह्म ज्योति में एक कण बनकर रह जाते हैं, पर जो भक्त है वो भगवान के वैकुंठ लोकों में, अनेक लोक हैं, कोई भी एक लोक में प्रवेश करते हैं और वहां भगवान के साथ लीला करते हैं, साक्षात भगवान का दर्शन करके उनके साथ लीला करते हैं। यहां जो ब्रह्म और परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, विशेषकर ब्रह्म का साक्षात्कार, उनको आमने सामने भगवान का दर्शन नहीं होता, ना ही तो वो भगवान के साथ आमने सामने से लीला कर सकते हैं। ब्रह्म में वो स्थित रहते हैं, स्थित रहते हैं। जीवात्मा का स्वरूप है सत चित आनंद, सत यानी हमेशा जो रहता है, चित यानी ज्ञान से पूर्ण और आनंद यानी आनंद से पूर्ण। जो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है उसे आत्मा का जो सत स्वरूप है सिर्फ इतना ही साक्षात्कार होता है, चित और आनंद का नहीं साक्षात्कार होता है। जो ध्यान योग के मार्ग से परमात्मा स्वरूप को का साक्षात्कार करता है उसे अपने आत्मा के सत और चित स्वरूप का साक्षात्कार होता है, आनंद का साक्षात्कार नहीं होता। पर जो भक्त है भगवान का उसे पूर्ण सत चित आनंद साक्षात्कार हो जाता है।
जैसे भगवान से बात कर रहे हैं, ऐसे तो अभी ध्यान लोग कर्म लोग, अगर आज के युग में अगर आदमी चाहे तो भी मतलब कहना बड़ा कठिन।
बिल्कुल
सरल उपाय क्या है कि मतलब आदमी भगवान को दर्शन को या भगवान प्राप्त आज के
ये बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा सवाल किया आपने कि आजकल के जमाने में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये मार्ग बड़े कठिन है और इनको करना प्राय असंभव है। इसीलिए बताया गया है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। इस कलयुग में एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और वो है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। भगवान का नाम का जाप कीर्तन करने से भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो जाती है, जिस वजह से फिर आप भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये भगवान का नाम यही कलयुग में एकमात्र उपाय है। भगवान के अनेक नाम हैं, लेकिन कली संतरण उपनिषद में एक विशेष महामंत्र का वर्णन किया गया है जो कि खास कलयुग के लिए है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरी महामंत्र का जाप अगर आप करेंगे तो बहुत ही जल्द आपके हृदय में जो भी अनर्थ हैं वो मिट जाएंगे और भगवान के प्रति भक्ति धीरे धीरे से जागृत हो जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है, ये आप कोई भी अवस्था में कर सकते हैं। आप गृहस्थ आश्रम में हो, आप संन्यास आश्रम में हो, आप व्यापारी हो या आप कोई सर्विस कर रहे हो, आप घर में रहते हो या आश्रम में रहते हो, कोई परवाह नहीं, ये सबके लिए भगवान का नाम है। हरे कृष्ण। मैं